Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Priyatama Priyake Smriti Se. संसार के विषयों की स्मृति से कोई आनंद की अनुभूति नहीं होती है। आनंद की अनुभूति शिव चरण कमल की स्मृति से ही आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि आनंद भगवत निष्ठा है, विषय निष्ठा नहीं है। आनंद परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए परमात्मा की स्मृति में आनंद है। आनंद विषय का स्वरूप नहीं है, विषय के स्वरूप नहीं है आनंद। आनंद विषय निष्ठा नहीं है, भगवत निष्ठा है, आत्मनिष्ठा है, ब्रह्म निष्ठा है। निष्ठा माने ब्रह्म में रहने वाला ब्रह्म का स्वरूप है, विषय में रहने वाला विषय का स्वरूप नहीं है आनंद है। लेकिन लोग कह देते हैं बड़ा आनंद आ गया महाराज, कह देते हैं लोग, पता नहीं कैसा आनंद आया उनको। मिर्ची के पकौड़े जब बारिश हो रही हो है तो चटनी का कोत मिर्च की चटनी और मिर्ची के पकौड़े है गरम गरम खा रहे, हा मजा आ भी गया। और यहां से पसीना जुआ से कर रहा है और फिर कह रहा है मजा आ भी गया। लेव जी, अरे वो मजा कोई पकौड़े में थोड़ी है। और दूसरे दिन सुबह फिर रोने लग जाएगा, क्या मजा आ गया भाई। शिव स्मरण करने के बाद फिर दूसरे दिन रोना पड़ेगा? पकौड़े स्मृति से तो दूसरे दिन फिर रोना पड़ेगा। डॉक्टर क्या जाएगा, महाराज डॉक्टर साहब पेट बगड़ी गयो। कैसे बगड़ा बिगड़ा तुम्हारा पेट? बोले काले पकौड़े, मरचों नो पकौड़े खाए वाता, શું કામ ખાવા? તમને ખબર છે મરચી ને પકોડો તો પેટ જલન હોગા, તુમકો પતા થા, ફેર ક્યું ખાયા? નહીં મહારાજ, બના થા, બડા સ્વાદ આ ગયા, ખાને કી ઈચ્છા હો ગઈ, અને ઈચ્છા હો ગઈ તો ફેર રોના પડા। લેકિન ભગવત શિવ કે જો સ્મૃતિ હૈ વો કભી ભી સ્મરણ કાલ મે ભી આનંદ દેને વાલી હૈ, પશ્ચાત ભી કિસી કે લિયે રિએક્શન કરને વાલી નહીં હૈ વો। भगवत स्मृति बहुत सुंदर श्लोक है ये। नरत्वं देवत्वं नगवन मृगत्वं मशकता पशुत्वं कीटत्वं भवतु विहगत्वादि जननम सदा तत्पादाब्ज स्मरण परमानंद लहरी विहारासक्त चेत। चेत माने यदि, यदि हृदयम, ये तुम्हारे पास जो हृदय है वो हृदय पद्म परमात्मा के चरण कमल के स्मृति रूपी आनंद में विहारासक्त, भगवान शिव के चरण में आसक्त हो गया तो क्या होगा? परम आनंद लहरी, उस तरंगों में वह आनंद का अनुभव करेगा। किम इह तेन बपुसा, तब वो व्यक्ति इन शरीरों से क्या लेना देना है उस व्यक्ति को, पशु का हो पक्षी का हो। पुराण में एक कथा आती है, एक बार शिवजी और पार्वती घूमते हुए कहीं जा रहे थे। सनत कुमार लोग, चार भाई है ना सनत कुमार के, सनक सनंदन सनातन और सनत सुजात, ये चार भाई हमेशा ब्रह्म विचार करते रहते हैं। एक दिन एक भाई व्यासपीठ में बैठ के सत्संग करेंगे, कथा करेंगे, और तीन भाई श्रोता बनकर नीचे बैठते हैं, एक वक्ता बन गया और दूसरे दिन दूसरा वक्ता बन जाएगा, बाकी तीन श्रोता बनेंगे, तीसरा दिन तीसरा वक्ता बन जाएगा, बाकी तीन श्रोता बन जाएंगे, चौथे दिन चौथा वक्ता बन जाएगा, बाकी तीन श्रोता बन जाएंगे। पांचवें दिन पहला वक्ता बन जाएगा, बाकी तीन। इसी तरह बारह महीना निरंतर वेदांत विचार करते रहते थे। एक समय की बात है, किसी पेड़ के नीचे बैठकर सनत कुमार वेदांत विचार कर रहे थे। इसी तरह एक वक्ता और तीन श्रोता बनकर, तो भगवान और शिव शिवजी जा रहे थे, भगवान शिव और पार्वती वहीं से जा रहे थे। वो तो वेदांत विचार में इतना मग्न थे, शिव पार्वती आए हैं इस बात को उनको ख्याल ही नहीं रहा। तो शिव ने तो कोई वास्ता नहीं की, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? क्योंकि भगवान के लिए तो कहा है ना, अमानी मान दो मान्य, है ना? हाँ, अमानी खुद अमानी सन मानदह, खुद अमानी होकर दूसरों को मान देता है, तब उसी कारण से परमात्मा मान्य हो गए, सभी के द्वारा मान्य हो गए। यदि भगवान पहले मानी हुए होते तो फिर सबके द्वारा मान्य न होते। विष्णु सहस्र नाम का श्लोक, अमानी मान द तस्मात मान्य। देखो, अमानी होकर दूसरों को मान देने के कारण ही तो वो सबके मान्य हो गए। भगवान शिव को तो कोई मतलब नहीं है भाई मान सम्मान की, है? तब नीतिकार ने एक जगह लिखा हो, प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा गौरवम रौरवम समा। प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा, ज्ञानियों के लिए तो प्रतिष्ठा क्या है? सुकरी विष्टा। और गौरव क्या है? रौरवम समा है, नरक के समान है गौरव। इस तरह उसका कोई दृष्टि ध्यान ही नहीं देते हैं समझदार व्यक्ति, न प्रतिष्ठा की आकांक्षा न गौरवता की। तो निरपेक्ष है, मानापमानयो तुल्यो तुल्यो मित्रारिपक्षयो, यही तो। भगवान तो उसी स्थिति में थे शिव जी, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब पार्वती तो जरा दूसरे ढंग की थी, उनको यह लगा कि शिव जी और पार्वती हम तीनों लोग के स्वामी हैं। माता तो पार्वती देवी, पिता देव महेश्वरा है। पार्वती को वो बात ख्याल आ गई, महेश्वर तो सबके पिता हैं और मैं सबकी मां हूं, सबकी मां हूं तो इनकी भी मां हूं, तो हमको देखकर ये लोग क्यों नहीं खड़े हुए, बैठे हैं पशु की तरह जड़ भाव से। तो भगवान शिव के तरफ कुछ पूछा नहीं, कुछ नहीं किया, आवेश में ये लोग हमारा अपमान कर रहे हैं। तो पार्वती ने सनत कुमारों को श्राप दे दिया, ऐसे ही श्राप दे दिया, आगे जाओ तुम लोग सब ऊंट बन जाओ, क्योंकि तुम लोग पशु बुद्धि के बैठे हो, किसी को मान सम्मान देना नहीं जानते हो, पशु हो जाओ, जाओ। श्राप दे दिया, और श्राप देते ही पशु हो गए सनत कुमार। तो उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया सनत कुमारों ने। भगवान शिव ने कहा कि ये देवी, श्राप देना केवल तुम ही जानती हो, हमको भी आता है, हमने क्यों नहीं दिया? ये वो व्यक्ति हैं, इनको श्राप दो क्या शराब दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हैं? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तो आत्म स्थिति में बैठे हुए हैं, इनकी वृत्ति तो एकदम अखंडाकार वृत्ति बनी हुई है, सतत ब्रह्म चिंतन में लगे हुए हैं। तुम्हारे श्राप से इनको सनत कुमार बने तो कोई फर्क नहीं, श्राप से ऊंट बने तो फर्क नहीं, आशीर्वाद से सनत कुमार बने कोई फर्क नहीं, शरीर पर उनका दृष्टि ही नहीं है, देहाध्यास ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी तुम आवेश में आकर श्राप दे दिया, बन गए ऊंट। बोले और क्या, देखो ना आपका मेरा अपमान किया उन्होंने, खड़े तो होना चाहिए था। बोले तुम जानती नहीं हो, बिना विचारे करती हो काम, कई बार कहा कि सोच समझ कर काम किया करो, तो आप लोगों के पति भी ऐसे कहते हैं ना कभी कभी। तो चले आगे बढ़ गए, कई वर्ष हो गया। भगवान शिव ने विचार किया, पार्वती को दिखाएं तो सही, उनका श्राप का क्या फल हो रहा है। तो एक दिन घूमते घूमते पार्वती को भी लेके गए, वो चारों भाई तो चार ऊंट बनकर बैठे आराम से, आराम से निश्चिंत बैठे, गर्दन लंबा हो गया। पार्वती ने बड़ा अच्छा कर दिया काम, क्योंकि ऊंचे ऊंचे पेड़ के घा पात पत्ते शाखा हाँ सब आराम से गर्दन से ऊंचे ऊंचे भी वो तोड़ के खा सकते हैं आराम से है? अब ऊंट हो गए तो वैदिक कर्म से भी करना नहीं पड़ा। सनत कुमार थे तो वेद का अनुशासन मानना पड़ता था, प्रातः काल उठना पड़ता था, स्नान शौच आदि करना पड़ता था, गीता में कहा है ना, यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्त देवी तरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते लोका संग्रह में वापी संपत्सन कर तुम्हारा जी। ज्ञानी को भी खुद अपने लिए आवश्यकता न होते हुए भी लोक शिक्षा के लिए शास्त्र विधि का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ये बात सनत कुमार जानते थे। तो चार बजे उठते थे, शौच आदि के द्वारा नाना धोना करना ही पड़ता था उनको। अब तो पार्वती ने श्राप दिया, पशु हो गए। वेद पशु के लिए है कि मनुष्य के लिए है? वेद का अनुशासन पशु के लिए कि मनुष्य के लिए? वेद का अनुशासन मनुष्य के लिए, पशु के लिए तो है ही नहीं। अब जब तक वो मनुष्य थे, सनत कुमार थे, तब तक वेद अनुशासन था। अब पशु हो गए तो वेद अनुशासन से मुक्त हो गए कि नहीं? अब वो बस आराम से वहीं खाए जा रहे हैं, हगे जा रहे हैं, नहाना भी नहीं, धोना भी नहीं, ले जी, और खाते भी रहे हैं, हग भी रहे, मल भी कर रहे हैं, खाए भी जा रहे हैं। कोई वेद अनुशासन तो है ही नहीं भाई। मस्त ना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, मन है शरीर ऊंट का है, मन अखंडाकार वृत्ति चिंतन करे रहे हैं, वो ब्रह्म विचार कर ही रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब सामने आए तो शिव जी ने कहा पार्वती को, जाके पूछो, तुमने जब श्राप देकर ऊंट बना दिया तो पहले सनत कुमार के रूप में रहते थे उस समय में, और इस समय जो ऊंट बनकर रह रहे हो इस समय में क्या अंतर है, क्या फर्क हुआ, तुमको क्या अनुभव हुआ ऊंट के शरीर में और मनुष्यों के शरीर में रहते हुए क्या फर्क पड़ा? तो सनत कुमार ने कहा कि मां तुमने बड़ी कृपा की, मनुष्य के शरीर में रहते वेद का अनुशासन पालन करते करते हम हैरान होते थे, तुम्हारी कृपा हो गई, ये ऊंट का शरीर दिया, अब तो आनंद आ गया, वाह बड़ा आसमानंद है महाराज। तो शिव जी ने कहा देखा तेरा श्राप दिया का फायदा क्या हुआ, किसी को श्राप देने पर यदि वह दुखी होता, रोता, गिड़गड़ाता, समझे ना, आपको कभी गुस्सा आता हो तो गुस्सा आते ही आप उसको गाली देते हो, गाली देते हो ना, तुम्हारा दिया हुआ गाली उसके मन में लगे और वो उसके पीड़ा का अनुभव करे तो तुम्हारा गाली फलीभूत हुआ, फलीभूत हुआ कि नहीं, सफल हुआ गाली। और तुम गाली देते जाओ, वो सुने अनसुने कर रहा है, उसको छू ही नहीं रहा है वो गाली, तो क्या हुआ तुम्हारे गाली, असफल हुआ, फलीभूत नहीं हुआ। तो दो चार दिन गाली देते रहोगे उसको, उस गाली से कुछ नहीं लगेगा, तो तुम क्या करोगे, इसको तो गाली दो तो भी कुछ नहीं लगता, बेकार है गाली देना, कहते हो कि नहीं, हा? तुम्हें दुख हुआ, उसको होना चाहिए तो तुम्हारे गाली से, तुम्हारी गाली सुनते ही उसको दुखी होना चाहिए था, यदि वो दुखी होता तो तुमको गाली देना मजा आता, और तुम गाली दिए जा रहे हो उसको, उस छू ही नहीं रहा है वो गाली, तो दुख किसको होगा, उसको कि तुम्हें, गाली देने वाले को दुख होगा कि नहीं बोलो, मैं इतनी गाली दिए जा रहा हूं उसको छू ही नहीं रहा है, दिए जा रहा हूं उसको छू ही नहीं रहा है, मैं अपमान कर रहा हूं उसको कोई असर ही नहीं कर रहा है, अपमान करने पर भी वो असर नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो दुखी हो रहा है जो अपमान कर रहा है, अपमानित होने वालों को असर नहीं करेगा तो वो दुखी होगा, कहेगा कि बेकार गया मेरा अपमान करना, उसका अपमान करना भी बेकार, गाली देना भी बेकार। ले तो सनत कुमारों ने कह दिया कि मां तुमने ऊंट बना दिया, बड़ा अच्छा किया। भगवान शिव ने कहा कि देखा, इनको मनुष्य शरीर मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पशु का शरीर मिले तो ही कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तू श्राप देकर कोई और कीड़े मकोड़े का शरीर बना देगी ना तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी वृत्ति तो हमेशा सतत ब्रह्मचिंतन में लगा हुआ है, तो शरीर से क्या लेना देना है भाई। हाँ, तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि महाराज मेरी एक ही इच्छा है, हाँ इसके बाद आपकी कृपा से मुक्त हो गया तो हो गया, यदि कदाचित मुक्त नहीं हुआ फिर जन्म लेना पड़ा किसी अपराध के या किसी वासना के या से किसी कर्मों के चलते, तो आपसे इतना ही है, शरीर चाहे जो कुछ मिल जाए मेरा मन आपके चरण में लगाए रहे, बस इतनी मेरी इच्छा है। नरत्वम देवत्वम नगवन मृगत्वम मशकता पशुत्वम कीटत्वम भवतु विहगत्वादि जननम सदा तत्पादाब्जम स्मरण परमानंद लहरी विहारासक्तश्चेत् हृदयमिह किं तेन वपुना। मन यदि परमात्मा में लगा रहता है तो शरीर से क्या लेना देना है बोलो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमसे लोग पूछते हैं, मैं गंडकी नदी की बात कर रहा था तो कोई जाते हैं शालिग्राम हम दे देते हैं, तो लोग पूछते हैं महाराज महिलाओं को शालिग्राम की पूजा करना चाहिए, कर सकती हैं महिलाएं शालिग्राम की पूजा, पूछ लेते हैं, प्राय पूछते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं महिलाओं को शालिग्राम की पूजा नहीं करनी चाहिए, शालिग्राम को नहीं छूना चाहिए। ले जी हा, अरे भाई शरीर से क्या लेना देना है, तुम श्रद्धा से पूजा करते हो तो करो, दिखावा के लिए करते हो तो फिर नहीं करना। श्रद्धा हृदय तुम्हारे हृदय से संबंधित, तो मैं एक ही तर्क दिया करता हूं कि तुलसी महिला है कि पुरुष है, है? तुलसी महिला है कि पुरुष है, महिला है, और महिला उनके सिर के ऊपर चढ़ सकती है और छू नहीं सकती है, बोलो। तुलसी शालिग्राम के सिर के ऊपर चढ़ती है कि नहीं, फिर क्यों छू रहे, क्यों सिर के ऊपर चढ़ गई, बोलो। तुलसी शालिग्राम के सिर के ऊपर चढ़ सकती है और महिला शालिग्राम को छू भी नहीं सकते। अरे भाई सिर के ऊपर तो नहीं चढ़ना चाहते हो ना, खाली सेवा करना चाहते हो, करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर के ऊपर नहीं चढ़ना। और तुलसी तो चढ़ गई, भगवान ने मना भी नहीं किया, क्या फर्क पड़ा बोलो। यहां तो पशु कीट आदि चैतन्य का उदाहरण दिया, तुलसी तो जड़ होने पर भी शरीर जड़ होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भगवान के साथ जुड़ी हुई है कि नहीं बोलो, देख लो उसका हृदय भगवान से जुड़ा हुआ है। जड़ शरीर वनस्पति स्थावर शरीर होने से क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देह तो कुछ भी मिल जाए महाराज हमको उसकी चिंता नहीं है, प्रारब्ध के अनुसार पशु का मिले, कीड़े का मिले, मकोड़े का मिले, जिसका मिलता है वो मिले, हमको उसके कोई लेना देना नहीं। हम इतने चाहते हैं कि हमारा मन आपके चरण कमल की हमेशा स्मरण करे, बस। देखो ये बात से बात निकलती हो तो एक दृष्टांत देते हैं महात्मा लोग। एक गांव में एक शिव मंदिर था कहते हैं, और एक ब्राह्मण पुजारी शिव मंदिर में पूजा करता था, तो उसकी ड्यूटी थी, वो कर्म था, पुजारी बनकर बैठा हुआ था। और कहते हैं महात्मा लोग दृष्टांत देते हैं, इसको खाली दृष्टांत के रूप में लेना समझने के लिए, ठीक उसी मंदिर के आगे एक महिला अपनी परिस्थिति के अनुसार बाध्यतावश होगा, वह गलत काम करने के लिए हमारे सामान्य दृष्टि से है ना वेश्यालय खोलकर बैठी हुई थी कहते हैं, दृष्टांत की बात है। तो वह रोज उसके सामने बैठे श्रृंगार करके ग्राहकों की प्रतीक्षा करे और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अनेक प्रकार के भाव भाव करे ताकि ग्राहक आ जाए, और ठीक जब श्रृंगार करके ग्राहक को आकर्षित करने के लिए वह दरवाजे के बाहर बैठती थी प्रतीक्षा में तो पुजारी भी उसको देखता था, लेकिन वो तो पुजारी हो गया जा नहीं सकता है ना, ब्राह्मण है पुजारी है जा नहीं सकता है। और कोई ग्राहक आ गया और अंदर कमरे में चला गया तो पुजारी कल्पना ही कल्पना के भूत में डूब जाता था, समझे कि नहीं। एक दिन की बात है, घूमते घूमते वहीं से आगे एक महात्मा आ गए, महात्मा मंदिर के अंदर गए दर्शन किया और सामने वो बैठी थी श्रृंगार करके महात्मा, उसके यहां चले गए खड़े हो गए, नारायण माताजी नारायण हरि, क्या चाहिए महाराज। अरे हम तो साधु हैं, समय हो गया भोजन का, हमको भिक्षा दे दो। बोले महाराज आप क्या मेरा भिक्षा हमारे से मेरे से भिक्षा लेंगे, मतलब हमको तो भिक्षा चाहिए। क्यों महाराज क्यों तुमने क्यों पूछी। बोले क्योंकि मैं एक गलत औरत हूं, मेरा आचरण ऐसा है अशुद्ध है, लोक निंदा परक मेरा आचरण है, मेरा व्यवहार है ऐसा, और ऐसे मेरे से तुम भिक्षा लोगे। महात्मा ने कहा कि अरे भाई तुम क्या आचरण कर रही हो, कैसे आचरण कर रही हो, हमको उससे क्या हिसाब लेना है, तुम्हारे पास भिक्षा है तो दे दो, नहीं है तो हम चले जाएंगे महाराज। तो उसने लाके भिक्षा दी, महात्मा ने ले ली। तो उसने कहा कि महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा प्रारब्ध मेरी परिस्थिति मुझे इस कर्म करने में मजबूर कर रही है, मैं कोई इसमें रुचि और इच्छा से नहीं कर रही हूं, बाध्यता से कर रही हूं, मेरा उद्धार कैसे होगा महाराज। बोले तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि ठीक मंदिर के सामने तुम्हारा यह दुकान है ना, तुम बड़े भाग्यशाली, सामने मंदिर है, रोज भगवान की सेवा करो, पूजा करो, झाड़ू करो, पोछा करो, यूं करो, सेवा करो, तुम बहुत भाग्यशाली हो और अपना काम भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा उद्धार उसी से होगा। तो महात्मा जब सेवा करने वो गए, महात्मा वो सेवा करने गई तो और सब लोगों ने उसको दुत्कारा और जाने नहीं दिया, गेट से अंदर घुसने नहीं दिया, अरे ऐसे गलत मंदिर के अंदर क्यों आ रही है, जा भाग जा। बड़े दुखी हो गई, महात्मा ने तो कहा था सेवा करो। कुछ दिन के बाद फिर महात्मा मंदिर दर्शन करने आए, दर्शन किया, भिक्षा मांगा, रोने लगे, महाराज हमको तो अंदर जाने नहीं दिया उन लोगों ने, मैं क्या करूं, कैसे सेवा करूं, आपने कहा था सेवा करो तुम्हारा कल्याण होगा। बोले बेटी तुम वो लोग जाने नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, जब भी तुमको फुर्सत हो कि बस वो भगवान शिव का ध्यान करो, क्योंकि सामने तो दुकान ही है, बस आंख बंद करो, उन्हें भगवान का ही स्मरण करो सतत। हा अरे महाराज आप बड़े बड़े राक्षसों का तो आप उद्धार करते हो, हा कैसे कैसे का आपने उद्धार किया, चंद्रमा से मैं गया गुजरा तो नहीं हूं, वो तो अपने गुरु पत्नी प्रति गमन किया है, उसको तो अपने उसका तो कल्याण किया है, मैं इतना गया गुजरा तो नहीं हूं, हे शिवा आप ही मेरे रक्षक हैं, मेरा कल्याण करो। बस सतत ध्यान हृदय में भगवान शिव का ध्यान करती है और परिस्थिति अनुसार जो काम करना है करती है। वहां बैठकर वेश्या का शरीर स्त्री का शरीर हो रहा है लेकिन मन सतत भगवान शिव के स्मरण में वो लगा रही है। ये समझने के लिए प्रसंग है, संदर्भिकी में बोल रहा हूं। तो उधर पुजारी मंदिर में बैठा है तो सतत उसका ध्यान कर रहा है। कहते हैं एक बार की बात है, आप लोग क्यों हंसने लगे, कहते हैं एक बार की बात है, पुजारी मंदिर के अंदर बैठकर उसका ध्यान कर रहा है और वो वेश्या अपने दुकान में बैठकर शिव का ध्यान कर रही है। ठीक उसी समय में बड़ा जोर से भूकंप आ गया, आ गया तो मंदिर भी गिर गया, वेश्यालय भी गिर गया, पुजारी भी मर गया, वेश्या भी मर गई। अब वेश्या कहां जाएगी? हैं? वेश्या को तो नरक जाना चाहिए ना। हाँ, स्त्री शरीर एक गलत काम कर रही है, उसको स्वर्ग जाने का कोई अवसर है अब नहीं है। अब पुजारी कहां जाएगा? ब्राह्मण का शरीर है, मंदिर के अंदर है, शिव का पुजारी है, वो कहां जाएगा? हम लोग की मान्यता तो यही ना है, है? हम लोग केवल शरीर और कर्म पर ध्यान देते हैं, भावना के मूल्यांकन हम नहीं करना जानते। परिणाम आश्चर्य यह हुआ कि पुजारी पहुंच गया नरक और वेश्या पहुंच गई स्वर्ग। तो संयोग से कुछ दिन के बाद उस गांव का कोई नगर सेठ मर गया, तो वो भी स्वर्ग पहुंच गया, कहीं दान किया होगा उसके बल से स्वर्ग पहुंचा। तो वहां वो वेश्या को देखता है, बड़ा आश्चर्य हो गया भाई उसको, तू यहां कैसे आ गई? हां, कुछ दिन के बाद एक और जीव मर गया, तो वो अपने कर्म के अनुसार नरक पहुंच गया। तो वहां पुजारी को देखा था, अरे तू यहां, तू कैसे आ गया? तो समझ में नहीं आया, तब इंद्र से पूछा उसने, ये वेश्या यहां कैसे आ गई? अब यमराज से पूछा उसने कि ये पंडित यहां कैसे आ गया? तो इंद्र ने जवाब दिया, जेठ जी, इसका शरीर स्त्री का है, काम वो गलत कर रही थी, फिर भी ये सतत भगवान का चिंतन करती थी, हृदय भगवान के चरण में समर्पित था, वृत्ति सतत भगवतमय था इसका, मरते समय उसकी वृत्ति वही थी, अंते या मति सा गति, तो भगवान की कृपा से ही इसका सदगति हो गया। और इसकी अंत या मति सा गति, उसकी अंतवृत्ति उधर चिंतन में था, विषय चिंतन में था, वो परमात्मा चिंतन में थी। ये दृष्टांत से, ये श्लोक के अनुसार शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं, महत्वपूर्ण शरीर नहीं है, महत्वपूर्ण है हृदय। इसीलिए भक्ति हृदय में होता है, हृदय से सतत भगवत चिंतन करो, शरीर चाहे कीड़े का हो, स्त्री का हो, पुरुष का हो, देवता का हो, असुर का हो, है? प्रहलाद का शरीर किसका है? असुरों का है, परंतु सतत हृदय में भगवान की भक्ति है। लेव जी, रावण का शरीर किसका है? ब्राह्मण का है। रावण का शरीर किसका है? ब्राह्मण का है। पौलस्त्य कर नाती, नहीं सुना है? पुलस्त्य ऋषि के नाती, ब्राह्मण का पुत्र है। क्या करोगे शरीर ब्राह्मण का होने से? वृत्ति भगवतमय है ही नहीं, विषयमय है। और आगे क्या कहेंगे कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।